फिर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो जियोग्राफी को, की है कभी, आपको पता है कि दरिया जो है ना, इस दरिया के क्या हिस्से होते हैं? नहीं पता, कभी गए हैं दरिया पे? दरियाए जेहलम, दरियाए नीलम। मुझे तो लगता है हमने खा खा के ज़िंदगी बसर कर दी। किए मैं ना? आप देखिए, जो दरिया होते हैं ना, उसके तीन हिस्से होते हैं। अब इसको भी आप थोड़ा सा ईमान के साथ समझिएगा। एक उसका अपर कोर होता है, बिल्कुल ऊपर की सतह करीब की होती है। फिर एक मिडल होता है, थोड़ा सा बीच में आगे जाएं तो मिडल कोर शुरू हो जाता है, और एक सबसे पीछे लोअर होता है। किसी भी दरिया को आप सोचे ना, तो शुरू में उसका ये जो डायामीटर है ना, बहुत थोड़ा होता है, एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है, कुछ मील लंबी और ख़त्म। ये शुरू किए ना, ये नैरो होता है, ठीक है, और इसके नीचे गहराई नहीं। आप कभी समंदर पे गए हो तो आप काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, पीछे से माँ पुकार रही होती है, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, लेकिन आप देखते हैं कि वो रेत में पांव जम जाते हैं आपके, फिर पानी जब वापस जाता है तो ऐसे लगता है हम भी साथ जा रहे हैं। हाँ, अब ये शुरू का जो हिस्सा होता है ना, ये छोटा होता है, जब थोड़ा सा ईमान आता है ना, तो हम नैरो होते हैं, रिजिड, ये भी हराम, ये भी गलत, ये भी फतवे फतवे फतवे, हमारे अंदर गहराई नहीं आती उस वक्त। हाँ, उस वक्त लोग हमें रास्ता नहीं दे रहे होते, इसलिए हमारा रास्ता तंग होता है। तो शुरू का ईमान जो होता है ना, ये मुखालफतों को तोड़ने वाला होता है। इसके बाद आप देखिए कि थोड़े दिन आप अपने ईमान पर जम जाएं, तो आप मिडल कोर में आ गए, ठहराओ। इंसान को जब नया नया दीन मिलता है ना, तो शुरू में जोश है, बाद में क्या होता है, थोड़ा ठहराव आने लगता है, जज्ब करते हैं ना, शुरू में नए नए मसले दीन के समझ आते हैं, लगता है सब कुछ ही गलत है, नमाज भी गलत थी, तरीका भी ठीक नहीं था, कुछ नहीं था, गलत है। नई नई तजवीद सीखनी शुरू करें, कभी क्या होता है, आपको लगता है मैं तो कुरान ही गलत पढ़ती हूँ, पढ़ना ही छोड़ दो। फिर साल 6 महीने पढ़ते जाते हैं, फिर थोड़ा ठहराव आता है कि नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, चलो खैर। इसी तरह ईमान में जब ठहराव आता है ना, तो फिर बाहर की मुखालफत कम होने लगती है, लेकिन अंदर जज्ब होता है, फिर हैजान कम होता है, गहराई पैदा होती है। और जितना आप आगे जाएंगे ना आपके ईमान के अंदर, तो आप देखेंगे कि चौड़ा हो जाता है दरिया। दरियाओं के काट का नाम सुना होगा, दरिया का काट। जितना आप अंदर जाते हैं ना, तो उतनी नीचे जरखेज मट्टी होती है, और आप कह लीजिए कि तजुर्बे की मट्टी इंसान के अंदर शामिल होती है। इसी तरह जो यूथ होती है ना, उसकी मिसाल दरिया का बिल्कुल फर्स्ट कोर है, जज्बात, जोश, मुखालफतें, पत्थरों से टकरा रहे हैं। जो लोग थोड़े से मिडल एज में या थोड़ा सा ईमान जज्ब कर चुके होते हैं, वो थोड़े से अपोलोजेटिक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, देख लो बेटा, फिर खानदान क्या कहेगा, फिर बच्चों के रिश्ते क्या होंगे, वो थोड़े से लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। लेकिन जो पुराना ईमान होता है, जिसको कहें कि फिर ईमान आपके दिल दिमाग का हिस्सा बन जाता है, असल वो दौलत। आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझना चाहेंगे? बस आप देखिए कि गाड़ी चलाते हैं ना आप सब, गाड़ी में एक ड्राइविंग सीट होती है, उधर ड्राइवर बैठता है, उधर उसके हाथ में गियर और सब कुछ होता है जो हम जानते हैं। इसी तरह उसके इंजन कह लीजिए, सबसे आगे इंजन होता है, फिर ड्राइविंग सीट है, और उसके बाद एक पीछे सीट है जिसमें लोग बैठते हैं। किसी सोसाइटी का यूथ जो है ना, वो उस गाड़ी का इंजन होना चाहिए, वो इंजन लोगों को चलवाने में मदद करेगा, स्ट्रांग, कहते हैं ना सुपर हॉर्स पावर, और पता नहीं एक और लफ्ज है, 7 व्हील्स कार है। जिस गाड़ी का इंजन स्ट्रांग होगा, वो गाड़ी तेज भागेगी ना, ठीक है। और अमूमन आप देखिए कि इंजन गर्म बड़ा हो जाता है, इसलिए यूथ बात बात पे गुस्से में भी आ जाती है, उनको लगता है लोग क्यों नहीं मान रहे हमारी बात। जो बड़े होते हैं ना, जो समझ लें कि मेच्योर लोग हैं, वो गाड़ी की सीट्स की तरह, गाड़ी की सीट्स कैसी चाहिए आपको, कंफर्टेबल, सॉफ्ट, पना देने वाली, थोड़ी सी कुजी किस्म की। किसी भी जगह अगर आपको दीन का काम करना है ना, तो उसका बेहतरीन असूल क्या है कि जो बूढ़े लोग, जो बड़े लोग हैं ना, उनको गाड़ी की सीटें बना के कि आप कंफर्ट दें लोगों को। बच्चे बाद बाद जोश में आके वो फैसले कर देते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, जज्बाती हो जाते हैं, कोई नेगेटिव ऐसा जुमला बोल दिया, पकड़े गए, कहीं ना कहीं पुलिस पीछे लग गई, कोई ऐसा फैसला कर दिया जो माँ बाप के लिए काबिले बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है, तो फिर माँ बाप को पीछे थोड़ी सी तसल्ली देने वाला होता है। वलवला बच्चों में हो और माँ बाप कंट्रोल वाले बने, वरना बाज दफा बच्चे अपना रुख गलत कर देंगे। जब ऑपोजिट कर ले, जब किसी सोसाइटी का इंजन या स्टीयरिंग बड़े लोगों में दे दें, तो वो आज हुआ है कॉम्प्रोमाइजिंग, हर वक्त डरते ही रहते हैं, खौफ ही खाते रहते हैं, और यूथ कहाँ चली गई? आप यूथ को पीछे कभी बिठा ही नहीं सकते। दीन के काम तब होंगे जब यूथ अपनी जिम्मेदारियां समझेगी। अल्लाह के नबी के मिसालें आपके सामने, सब आपसे यंग थे, आप पे छोटी उम्र के लोग ही मान लाए और बाप दुश्मन थे। अब्दुल्ला बिन उबई रासुल मुनाफिकीन और उसका बेटा अब्दुल्ला सच्चा मुसलमान, अबू जाहल जाहिलों का बाप और इकरमा उनका बेटा इस्लाम का दोस्त। तो ये दीन का मिजाज समझ आता है कि जब हम दीन को खूबसूरत रुख में रखते हैं, दोनों को साथ लेके चलें, ये एक टीम वर्क होता है। कुछ काम बड़े लोग अच्छे करते हैं, कुछ काम छोटे लोग अच्छे करते हैं, और मैंने अपने तजुर्बे में यही देखा है कि दोनों बिल्कुल जिस्म की तरह हैं। जैसे आप देखिए ना, आपका जिस्म अपने इमेजिनेशन में एक हैंगमैन बना ले, आंखें कान सब, हर एक हम में से अपनी सलाहियतों को पहचाने। आपने दीन की गाड़ी बनानी है और गाड़ी में हर पुर्जा चाहिए, ब्रेक्स भी चाहिए, आपको द स्टेयरिंग भी चाहिए और आपको सीट्स भी चाहिए। आप पहले तो चेक करें कि मैं खुद क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या सलाहियत है। अल्लाह ने हर एक को सलाहियत दी हुई है, ये मान लीजिए। बस आप देखिए कि मिसाल लिए ना हमने धातुओं को पिघलाने की, हिलिया की बात है, जेवरात, जेवर किस चीज़ से बनते हैं, सोने से बनते हैं ना। कभी अपने सोने के चिमटे देखे या सोने की हांडियाँ देखी, इसका मतलब कि कुछ लोगों को अल्लाह ने ज़ाहरी तौर पे बड़ी खूबसूरती दी होती है, बहुत डैशिंग किस्म की पर्सनैलिटी। अब वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी नहीं जिसमें गर्दन अकड़ जाए, लेकिन होते हैं। अल्लाह ने आपको शक्ल खूबसूरत दी, मिसाल है। अल्लाह ने आपको पहनने ओढ़ने का ढंग दिया, तो क्या आप इसको दीन के लिए इस्तेमाल करेंगे? करिए इसको दीन के लिए। अगर लोग खूबसूरत जोड़े पहन के मेहंदी के थाल सजा सकते हैं, तो आप अगर अच्छा जोड़ा पहन के दीन का काम करते हैं, कई लोग सिर्फ आपके अच्छे कपड़ों को से मुतासिर होकर वहां आके बैठ जाएंगे कि चले ये अच्छे कपड़े पहनने से तो नहीं रोकती ना, लेकिन आप अपने आप को दीन में लगाएं। हदीस में आता है कि अन्ना सुकल माद, लोग माइंस की तरह हैं, धातों की तरह। कुछ सोना है, किसी को अल्लाह ने शक्ल वाज भी दी है, कोई उनके अंदर ज़ाहरी अट्रैक्शन नहीं, लेकिन स्ट्रांग बहुत है। वो समझे ऐसे हैं जैसे लोहे, तो लोहे से आप फिर हथियार बनाएं, बर्तन बनाएं, हर एक से उसकी सलाहियत का पूछा जाएगा, क्या कर सकते थे, क्या किया। इस्लाम क्या चाहता है कि हम पहले खुद को पहचाने, मनारा फनफसा। जो अपने नफ्स को पहचान लेता है ना, बाज दफा वो रब तक भी पहुंच जाता है। इसको आप कहते हैं खुद शनासी। तीन लफ्ज लिख लें, खुद शनासी, खुद परस्ती और खुदकुशी। खुद शनासी के सेल्फ रिकॉग्निशन, आप खुद को रिकॉग्नाइज करें, मैं क्या हूँ, मैं अच्छा लिख सकती हूँ, लिखना शुरू कर दें, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, अच्छा बोलना शुरू कर दें, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं कंप्यूटर स्किल्ड हूँ, कंप्यूटर्स में काम करें। जैसे जिस्म में आंखें कान हाथ डिफरेंट काम करते हैं ना, इसी तरह दीन को सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरह एक दूसरी चीज़ होती है खुद परस्ती, सेल्फ वर्शिप होन, ये तो बस निकाल दें अपने अंदर से, मेरे बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, जो मुझे आता है बस वो तो कोई कर ही नहीं सकता। इस्लाम ना तो खुद परस्ती सिखाता है और ना खुदकुशी। शख्स खुदकुशी क्या है, खुद को ही ख़त्म कर दें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके आप अपने आप को कुछ ना समझें, नहीं, आप खुद को रिकॉग्नाइज करें। इस्लाम को भी खूबसूरती की ज़रूरत है, उसको भी अच्छे घरों की ज़रूरत है। अल्लाह ने आपको अच्छा घर दिया, मिसाल देती हूँ, अल्लाह की नेमत है। अब अच्छा घर, अच्छी जगह, एटमॉस्फेयर और इंसान की तबीयत पे बहुत अच्छा असर डालता है। वहाँ जाके बैठे तो मज़ा आता है, किसी के बिखरे शिखरे टेढ़े मेढ़े घर में से होके आए, तबीयत ही उलझ जाती है कि इतना घर में फैलावा था, इतना कुछ था, मट्टी पड़ी हुई थी टेबल पे, सुकून नहीं मिलेगा ना, हम सब जानते हैं। इसीलिए तो लोग इतने पैसे दे दे के बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग्स रखते हैं, क्योंकि वहाँ माहौल बड़ा साजगार होता है। अब अल्लाह ने आपको अच्छा घर दिया है, लाइए अपने इस घर को इस्लाम के लिए, बुलाएं अपनी दोस्तों को वहाँ। आप देखिए कि जो मॉडलिंग कराते हैं वो कैसी लड़कियाँ चूज करते हैं, खूबसूरत, दुबली, पतली, क्यों? कि लोग उनको देखकर इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि ये कपड़ा अच्छा ही लगेगा। तो क्या आज हमें अगर अल्लाह ने कोई खूबसूरती दी तो हम इस पर दुखी हैं, परेशान हैं? आज हमने इस्लाम के साथ खूबसूरती को बिल्कुल पीछे कर दिया। इसी तरह कुछ लोग हैं उनको सोसाइटी में बहुत आला मुकाम दिया अल्लाह ने, माशाल्लाह सोसाइटी उनसे मरूब है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MPs हैं, MNAs हैं, कोई भी हो सकती है ना खूबी। व्हाई यू आर एम्बेरस्ड, कम ऑन, यूज दिस फॉर इस्लाम। लोग आपकी बात सुनते हैं, जैसे सुमामा था, यमामा का हाकिम, उसके एक कॉल पे लोगों ने मक्का वालों का नाच देना रोक दिया। तो अगर आपको ऐसी कोई स्किल्स दी हैं तो बिस्मिल्लाह करें, और अगर आपके पास कोई खूबी नहीं आपको दिखती, लोहा है ना, तो क्या होगा, लोहा तो ज़्यादा अहम होता है। आप देखिए किसी भी बिल्डिंग की बुनियादों में क्या डलता है, लोहा। किसी चीज के स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में क्या डलता है? लोहा। कभी बुनियादों में शीशा नहीं देखेंगे आप, कभी सोना नहीं देखेंगे। अगर आपको लगता है ना कि मेरे अंदर कोई ऐसी खूबसूरती नहीं डली कैसी वाली, तो आप अपने लोहे को बुनियादों में डाल दें। सोने की, शीशे की, चमकती हुई चीजों की जरूरत पड़ती है फाइनल टचेस में, वो तो बाद की बात है। आप कुछ ईंटें अपनी बनाएं। आप देखिए कि कुछ ईंटें नजर आती हैं ना बिल्डिंग में, कुछ नहीं आती, तो क्या जो नजर आती हैं उनका ज्यादा मुकाम है? वो तो बड़ी डेंजरस है। आप इस होटल के फ्रंट पे कुछ पत्थर लगा देखे, इनकी मर्जी है साल 2 साल 10 साल बाद उसको बदल के दूसरे रंग का पत्थर लगा लें, मुमकिन है ना? रेनोवेशंस में पुरानी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन क्या चीज इस बिल्डिंग से नहीं निकलेगी? इसकी बुनियादें। तो सबसे सेफ काम, दीन के कामों में आप उस काम की बुनियाद बन जाए। और मैं आपको फिर एक प्यार से कहूंगी, किसी भी जगह जब भी दीन का मैसेज जाता है ना, तो पहला गिरोह जो होता है ना वो बुनियादें होता है। पहला बैच, फर्स्ट बैच है ना यहाँ का। आप इस शहर में इस काम की, इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जो मुझे आपका मुस्तकबिल नजर आता है ना, वो फ्यूचर की आप ईंटें हैं। और मैंने अब अपने दिल से बहुत सारे फैसले करने शुरू किए हुए हैं, अल्लाह खुद ही दिल में डाल देता है। किसी को बहुत ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, बस देखें कि इसकी हिम्मत इतनी है, बस उससे नजरें हटा के दूसरी जगह पर डालनी शुरू कर दें। ये भी बहुत है। कोई जरूरी नहीं कि हम दीन की बहुत बड़ी इमारतें बना लें। मैं इमारत से मुराद को स्कूल की बिल्डिंग नहीं कह रही, ये तो सबसे लीस्ट और छोटी चीज होती है। ये क्या बड़ी बात है? वो हाथ जो उस बिल्डिंग को संभालने वाले, उस कॉज में चलने वाले, जिनका हम और गम वो बन जाए, जब वो तैयार हो जाती है ना, अल्लाह तोहफे में और इनाम में बिल्डिंगें पकड़ा देता है। वल्लाही अल्लाह की कसम खाऊंगी, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रही, हम आज मुसलमान खुद अल्लाह से रोके हुए हैं बड़े बड़े मुल्कों की हुकूमतें लेने से। आज लोग कहते हैं फलां मुल्क तबाह हो जाए, हो गया जी, सारे काफिर मारे गए, क्या मुसलमानों में इतनी आज स्किल्स हैं कि हम सारा उनका एटॉमिक सिस्टम संभाल सकें, हम उनकी बड़ी बड़ी जो है ला में स्पेस शटल्स जाती हैं उसको संभालें? भाई सारे काफिर मर गए तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुसलमानों में आज इतनी ताकत नहीं है। जिस चीज की आप फिक्र करें वो क्या है कि क्या मेरे अंदर वो स्किल्स हैं जो मैं किसी काम को ले आऊं। एक बात मैंने सुनी थी कहीं कि एटम बॉम्ब बनाना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करके। आप देखिए लोग इतना कुछ छोड़ के सब पहले एटम बॉम्ब बना लें, इस इजी। मुश्किल क्या है? उस एटम बॉम्ब को कीप कैसे करें। कहते हैं कि इसकी हिफाजत इतनी सीरियस है कि अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी सी मिसहैंडलिंग हो अपने मुल्क में चल जाएगा, तो आप किसी दूसरे के मुल्क में तो नहीं अपना एटम बॉम्ब रखवा के आ सकते कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपके पर फेंक देंगे। ये वो चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे मुल्क एटम बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं करते। यही मेरी नज़र में दीन का काम भी है। इट्स वेरी इजी टू गेट स्पेस, प्लेस, जगह अल्लाह देता है, आपके तो हाथ में है ही कुछ नहीं। आपने अल्लाह को दिखाना है कि वी डिजर्व दिस। अगर हम नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, फिर भी खैर है, फराइज की सतह पे नमाजें तो ठीक हो ही गई हैं ना, इस कोर्स से हो जाएंगी और भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो अपना खून जलाएगा, जो अपने आप को इस काम में खपाएगा, अल्लाह उसे बहुत काम लेगा। और आप देखिए हम रोज एक दुआ मांगते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनमत अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पे तूने इनाम किए। कभी आपने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला रास्ता नहीं मुझे उन लोगों के पल्लू पकड़ा दे? सिरात के लफ्ज को काट के दुआ पढ़िए, इहदिनस सिरातल लजीना अनमत। आज हम मुसलमानों का ये डाउनफॉल है, हम नेक लोगों का पल्लू पकड़ना चाहते हैं जी, आपके तो फैल हम बख्शे जाएंगे। नहीं, अल्लाह कहते हैं जिस सिरात पे रस्ते पे वो चले तुम भी चलो। तो जब हम नेक लोगों की जिंदगी में एक हल्का सा झांकते हैं ना, तो मुझे तो एक जुमला समझ आया कि इनाम वाले लोगों की जिंदगी रूटीन लाइफ नहीं होती, वो माशरे से बिल्कुल अपोजिट जिंदगी बसर करते हैं। हजरत इब्राहिम देख लीजिए, बुढ़ापे में अपने बीवी बच्चे को कहाँ अल्लाह का घर आबाद करने के लिए छोड़ के आ रहे हैं। क्या ये कोई अकल में आने वाली बात है? इतनी बुढ़ापे में मिला हुआ बच्चा और उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम ऑपोजिट द विंड रास्ता है। और ये सारे नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ने वो थोड़ी सी जन्नत एक बनाई हुई है। हदीस में आता है कि जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है। क्यों बीबी आसिया ने कहा था कि रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मुझे जन्नत में अपने पास ही घर देना, क्योंकि दुनिया में तो बहुत देर मैंने बर्दाश्त की जुदाई, आप, मैं जन्नत में जाके नहीं आपसे जुदाई बर्दाश्त कर सकती। इसके लिए बड़े प्लान, बड़े इरादे, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। अलामा इकबाल कहते हैं, एक लीडर की खूबियां क्या होती हैं कि उसकी निगाह बड़ी बुलंद होती है, ऑप्टोमिस्टिक, बहुत ऊंचे प्लान देखता है, हायर आइज, किधर पहुंचना है, क्या करना है, अब इधर करना है। और आप देखिए, एक दीन के कामों में ना एक डायनेमिज्म है, शायद आपने इसको नहीं फील किया। मेरे इर्द गिर्द जो माशाल्लाह साथी रहते हैं, जायरा के साथ रहे हैं या मीडिया के जरिए साथ है, तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से बात करती हूँ जब रात को मीटिंग्स होती हैं ना, क्योंकि इधर रात है तो अमेरिका की सुबह, उधर सुबह है तो कहीं और रात हो जाती है। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ, हमारे कुछ साथी, मैं अपने दिल से जो बात कहती हूँ वो जुबान पे आ रही है, तो मैंने कहती हूँ कि अगर इनके बच्चे नाना होते तो इन्होंने मुझे रात को भी नहीं था सोने देना। वो काम कराते हैं हमसे जोश, और इतना मज़ा आता है, यकीन करें, कहीं वाइबर पे मैसेज, कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज, कहीं स्काइप पे मीटिंग। कल रात को एक मीटिंग चल रही थी, उसके बीच में कई मेरी ऐसी कॉल आई, बार बार वो मीटिंग इंटरप्ट हो रही है, और हर दफ़ा फिर मैं उनसे माजरत करती थी कि मेरी कॉल आ रही थी बीच में। तो ये मज़ा आता है ना, और प्लान्स, और हमने अगले कितने सालों का प्लान सोचा, हमने दावा सीडीज के प्लान बनाए, कितना मज़ा है मेरी ज़िंदगी में। और ये क्या ज़िंदगी है, कल क्या पकाएंगे, आलू ना पका लें, गोभी ना पका लें, ये कोई ज़िंदगी है? और आप ये काम करें, आपको सबसे बेस्ट खाने मिलते हैं। पूछे आपको क्या चाहिए, मुंह से बात करते हुए डर लगता है, शाम तक घर पहुंची होती है चीज़, वल्लाही। मैं नहीं, और जितना मुझे कुकिंग का शौक है, अल्लाह की बना, भाजी हंस रही है, यकीन करें, मेरा दिल करता है मैं या पढ़ाऊं या खिलाऊं। तो अपनी जिंदगी क्या जिंदगी है, और इसमें मजा कितना है। कल मैंने आपको शायद जुमला बोला था कि मेरे लिए द जिसको कहे कि रोमांटिसिज्म है ये, कि मैं इस जगह से उठ के सीधी एयरपोर्ट जाऊं, कि मेरी फ्लाइट है, लेकिन मैं क्लास में आके यहां से उठ के जाऊंगी। क्या ख्याल है, मैं इधर ना होता मुझे रोक नहीं सकते, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं, मैं घर से कर लूं, पर मैं इस वक्तों में क्यों ये काम करती हूं कि अल्लाह मैं तुझे यही तो कल दिखाऊं। उस वक्त जब मेरे लिए मुश्किल था तब मैंने ये किया। ये वो वक्त होता है जहां अल्लाह से कुछ मिलता है, और उससे पहले ही हम बस मोड़ चुके होते हैं, सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल खोल दे। जितना आप अल्लाह के लिए कुछ करेंगे, अल्लाह आपको उतने ज्यादा मौके देगा। इन सारी बातों से क्या सीखा, आ जाइए इधर नादिया, आप आइए शाबाश, और इधर से हुमा आप आ जाएं, फौरन आ जाएं चंद सेकंड में, और पीछे से आ जाइए जी आयशा, आप आइए। बाकी भी अपनी मर्ज़ी से लिखिए, अपने कमेंट्स से, मैं इसको बोलूँगी इंशाल्लाह हम इसकी सीडी बनाएंगे, और हो सकता है आपके ये कमेंट किसी की हिदायत का ज़रिया बन जाए। आसफा पीछे हैं तो वो भी आ जाएं जी, अच्छी आवाज़ से बोलिएगा, थोड़ा ऊँची ना।
Alhamdulillah, Jazakallah khair, Sazaji. I think it was a really full of gems class, lots of ideas, lots of lessons. So I'm still absorbing, but just a new motivation to do something, to plan something for the Deen, inshallah, and ask Allah to use us for His cause, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सूर्य यूसुफ के गुजरने के पास हुए रात में वाकई बहुत अजीब फीलिंग है मेरे दिल की। आज के रस्म के बाद आज का रस्म वाकई मेरे से जुड़ने के लिए मोर देन इनफ था, सब कुछ शेयर नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रस्म वाकई बहुत मोटिवेशनल था, मेरे दिल जितने मेरे दिल के अंदर के क्वेश्चन थे उनका आंसर्स था। और मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी है वो ये कि सूरत यूसुफ हर वक्त मेरे लिए सूरत यूसुफ ऐसी थी कि मेरा हर अमल, मेरी हर बात करने से पहले मुझे ये होता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमल क्या था। कुछ भी मैं करने लगती थी तो मुझे फ़ौरन ये फीलिंग्स आती थी। और जैसे ही सूरत रात शुरू हुई तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक तो ईद शुरू हुआ, तो और कल से अपना चोड़ आज के उसमें निकल गया, मुझे नहीं एक्सप्लेन कर पा रही अपनी फीलिंग्स।
वालेकुम अस्सलाम।
बस मुझे यही ख्याल आ रहा था सुनते हुए, एक सवाल मैंने लिखा था अपने नोट्स में और उसको हाईलाइट किया था कि मैं अजीमत के दर्जे पे जीना चाहती हूँ या फराइज के दर्जे पे जीना चाहती हूँ, और अगर मैं फराइज के दर्जे पे ही रह गई तो फिर मैं उस समंदर के झाग की तरह ख़त्म हो जाऊँगी, और जो धात को पिघलाने के बाद जो मैल निकलता है उसकी तरह ख़त्म हो जाऊंगी। और अगर मैंने कोशिश करके अजीमत की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की कम अज़ कम, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो
किसी और के भी काम आ जाए, मेरे जाने के बाद मेरे अमाल मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए शायद, इंशाल्लाह बस यही शेयर करना था।
जी आप प्लीज कम कम है। आप देखिए कि जैसे सोने की बात हो रही है ना, तो हमारी जुबान में किस सोने की कीमत ज्यादा होती है? 24 कैरेट की होती है ना, 22 की से क्या फर्क है? 24 में खोट नहीं होता, 22 में खोट होता है। इसी तरह अल्लाह की नज़र में हमारी वैल्यू हमारे ईमान के साथ है। जितना खालिस ईमान होगा ना, कल अल्लाह ताला उतना हमें लाएगा। अब हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारा ईमान किस दर्जे का है, तो अल्लाह फिर उसको मुश्किलात की भट्टी में डालता है। जैसे सोना पता चलना चलाना हो ना कि सही है कि नहीं, तो लोग उसको पिघलाते हैं। और ये जो फतन का लफ्ज़ है ना, धातुओं को पिघलाना, वो भी खोट मालूम करने के लिए होता है। तो कभी अगर कोई आजमाइश आए ना, तो उसके लिए भी ये सोचा करें कि अल्लाह ने मेरे अंदर का कोई खोट दूर किया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह, आपकी क्लास सुन रही थी और ये बार बार ख्याल आता है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे हाथ पांव जुबान खान और आंखें जो है, इस पे हर वक्त अल्लाह की निगाह रहे कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमें ये शऊर दे दे कि हर चीज करनी है इबादत के लिए करनी है, तो इससे फिर हमारी जो ट्रेनिंग है जब गलत करने लगे तो उससे रुक जाए इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि वो मेरी दोस्त का कहना है, वो कहती है कि जीना तो क्या जीना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अल्लाह के लिए जीना जीना है। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सोना बन जाए इंशाल्लाह।
जी इस पे एक बात बढ़ा देती हूँ कि जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए। हम सारी ज़िंदगी जीने की फ़िक्र करते हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर हम इस दुनिया से सिर्फ अपने इस जीने की फ़िक्र करके गए, कितने दिन लोग हमें याद रखेंगे? वो जितना प्यारा होता है ना, वो उतनी मुट्ठियाँ मिट्टी की हमारी कब्र पे डालेगा, और उतने ही प्यार से हमें वो कब्र में डालेगा जितने प्यार से हम दुनिया में उसके काम करते थे। करीब वाले लोग दफन करते हैं ना, नहलाते हैं धुलाते हैं, सब छोड़ाएंगे, और फिर उसके बाद हमें कोई याद नहीं करेगा, इल्ला ये कि हम कुछ करके जाएं। ये दुनिया का असूल है। जैसे दुनिया में ख़राब चीज़ें ज़ाया हो रही हैं ना, जन्नत में भी यही होगा। अल्लाह जो खालिस रूहें होंगी ना, उनको जन्नत में बसा देगा, और जो रूहें ऐसी हैं जो बेकार हैं, जुफान, ये जहन्नुम क्या है, कूड़ा करकट की जगह, ट्रैश क्या है ना जहन्नुम, कि अल्लाह ताला वहाँ उसमें लोगों को डालकर पीछे ले जाएगा और बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं होगा। फिर आप देखिए कि हमेशा दीन के रास्ते में मुश्किलात नहीं आती, कभी कड़क कभी चमक, कभी बिजली कभी बहार। ये तो मैं हंसती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुश्किल से 2 घंटे का दर्स होता है, जहाँ भी जाएं सब मिला के 45 मिनट से ज़्यादा मैं पब्लिक में नहीं देती दर्स, लेकिन चले बात करने में मिसाल में जो भी घंटा सवा 2 घंटे में नमाज कर कराते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ सिस्टर 4-4 घंटे नहीं जाती वहाँ से। खाना अब स्नैक्स अब पीना अब पार्टी अब कुछ, आने से पहले तैयारी, जाने से पहले, वो किधर जाता है फन? यानी बज़ाहर देखा जाए तो नेकी के काम मुश्किल लगते हैं, लेकिन इसमें तो रोज़ पार्टी है। सिर्फ आपकी सोच बदल गई ना। जिनको पार्टीज का शौक है, वो एक दफ़ा दीन के कामों में आके देखे, हर दिन पार्टी है। और वो कौन सी पार्टी है जो, अब ये नहीं कि पार्टी के शौक में आप दीन के काम में आ जाए, लेकिन आप देखिए कि वही बात है कि दुनिया तो साथ रखी भी मिल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, बुखारी और मुस्लिम में, अबू मूसा अशरी से, आपने फरमाया कि जिस इल्म और हिदायत के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा, सोचिए आपके बात करने का अंदाज, उसकी मिसाल बारिश की है जो ज़मीन पे बरसी, फिर ज़मीन के एक हिस्से ने पानी को जज्ब किया, सोचिए कुछ लोग थे जिन्होंने वही इलाही ली, फिर वहाँ से घास और चारा होगा जो बाद में लोगों और इंसानों के और जानवरों के काम आया। बाद ज़मीनें ऐसी थी जिसने पानी को तो जज्ब किया लेकिन वहाँ कोई फसल नहीं उगी, लेकिन थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा हुआ, मसलन जैसे पानी जमा हो गया, कोई छप्पड़ बन गया, कुछ भी जानवरों ने पी लिया, इसने भी फ़ायदा दिया, लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा संगलाह था, यानी रॉकी था, पत्थर थे वो, उस पे पानी आया लेकिन ठहरा नहीं। ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह की किताब को सुनकर उतना ही फ़ायदा होता है जितनी देर उस जगह पर बैठे हों। बारिश ख़त्म होती है, आप देखिए उसके बाद थोड़ी देर में जो मोज़ेक टाइल्स हैं वो वैसे ही खुश्क हो जाती हैं। तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो कि इस तरह के हालात पे हम अपने आप को रखें कि जब तक सुनते रहें तो फायदा हो और उसके बाद हम इसको छोड़ दें।
रोज तो क्लास लेनी वाकई आसान थी कि रोजाना वही वाली रूटीन थी, लेकिन अब थोड़ी सी बीच में मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे घर में शादी हो रही है मेरी भांजी की, तो अब आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, تو وہی آج صبح بھی وہی بات ہوئی, تو وہی جب میں کلاس میں بھی آئی ہوں تو وہی والے استقامت کی بات ہو رہی ہے کہ جمنا ہے کہ عام حالات میں تو بندہ آنا تو وہ تو آسان ہے, تو جو مشکل حالات میں جم جاتا ہے وہی والا اسی میں بلکہ تقویٰ بھی آتا ہے اور استقامت بھی آتی ہے. آج ماشاء اللہ بڑا اپنے آپ کو پش کر کے لے کے آئی ہوں, حالانکہ رات کو کافی لیٹ سوئی ہوں 4 بجے تک, اور بیچ میں پھر مشکل آ گئی کہ بچے کی بھی طبیعت خراب تھی, پھر مجھے اوپر جانا پڑا تھوڑی دیر کے لیے. تو لیکن تھوڑا سا اطمینان اب محسوس کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ کہ آئی ہوں تو اللہ میرے کام بھی آسان کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, گھر جاؤں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کاموں میں بھی آسانی ہوئے گی. تو آپ سب سے بھی دعائیں, میرے لیے بھی دعا کریں کہ باقی اور سب کے لیے جس میں کو بھی تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اللہ استقامت پہ جمائے رکھے اور باقی اگر تھوڑا سا بندہ ڈھیلا ہو جائے نا حالات, اور وہی والے ڈھیلا اور کرتے جاتے ہیں وہ حالات, ایسے شیطان بھی بیچ میں کر دیتا ہے اور بندہ سست بھی ہو جاتا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ جم جاؤ تو آگے بھی آسانیاں ہوں گی ان شاء اللہ.
صرف ایک پرسیپشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, آپ ایک دفعہ سوچ کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے فیصلے آسان کر دیتا ہے. لیکن چونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا, دوسرے ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں, تو ہماری ایک سسٹر تھیں, یعنی ایسی دوستوں میں سے ہی ہیں, کچھ عرصہ پہلے مجھے کہیں ملی, تو وہ آتی ہیں ادھر کبھی کبھی فنکشنلی, تو کہیں اور جاتی ہیں, تو میں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی ایک ایسا موقع تھا تو مجھے ملیں تو کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کی شادی میں ایک مہینہ رہ گیا, تو میں نے تو وہاں لکھ کے چھٹی دے دی ہے کہ میں ایک مہینہ نہیں آؤں گی اور اس کے بعد آؤں گی, اور اس بات کو گزرے ہوئے بھی اب 2.5 ماہ ہو گئے لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے. آپ یاد رکھیے کہ یہ گرپ جب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جب دنیا میں ہوتے ہیں نا تو بہت جم کے دنیا بناتے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ, ایسے لوگوں کو فوکس کریں. آپ کو اپنے ارد گرد اگر ایسے لوگ نظر آتے ہیں نا جو کسی جگہ مثلاً لیڈرز ہیں اور لوگ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں, ان کی چلتی بہت ہے, آپ ان کو فوکس کر کے دین کی بات بتائیں. وہ جب دین کے اندر آئیں گے نا, جس اعتماد کے ساتھ پہلے وہ گناہ کرتے تھے نا, اس اعتماد کے ساتھ بعد میں نیکیاں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت, وہ لوگ جو جاہلیت میں تم میں سے بہتر تھے نا یا بہترین تھے, خیارکم فی الاسلام, وہ اسلام میں آ کے بھی بہترین بنتے ہیں. کب؟ اذا فقہوا, جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو کل دیکھا کہ حرم میں کھڑے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یا تو عمر بن ہشام سے یا عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے, اور اگلے ہی کچھ دن میں دیکھ لیا کہ حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کفر میں پکے تھے نا. پہلے یہ لوگ ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں, پھر یہ ڈٹ کے نیکیاں کرتے ہیں, اور یہ ہم جیسے جو بیچ کے نا میڈیوکرز, ہر چیز میں ایوریج پہ, چلو اٹس اوکے, کھا لیا ٹھیک ہے, جو مل گیا پہن لیا, پھر وہ دین میں آ کے بھی بیچ بیچ کے رہتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں فائدہ لیتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ جیسے یوسف اسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا, کیٹ سٹیون تھے کل کے, اللہ نے آج ان کو اسلام کے لیے طاقت دی. خالد یاسین کو دیکھ لیجئے, جو بھی نام ہے, میں تو صرف کچھ زیادہ نہ جاننے کی بنیاد پہ صرف اس محبت میں ان کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ بون مسلم تھے لیکن انہوں نے اسلام کو دوبارہ اڈاپٹ کیا. ہم لوگ بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیشہ اپنی فکر کریں. پچھلی صورت میں دیکھے حضرت یوسف کا تذکرہ سنا, جیل میں تھے, خیر تھی نا ان میں, تو اللہ نے ان کو مصر تک پہنچا دیا. امام بخاری آپ کو پتہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بخارا کے چھوٹے سے گاؤں میں. چونکہ ان میں خیر تھی, آج کوئی مسلک مسلمانوں کا پورا نہیں ہوتا جب تک امام بخاری کی کتاب کو نہ لے آئے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس چیز پہ لے آئے اور ہم کچھ کر کے دنیا سے جائیں, اور جب ہم کچھ کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا اپنی خوبیوں اور خامیوں کا. جب آپ دین کے نام پہ ایک ٹیم بنتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں تھی, پتہ ہی نہیں چلتا اپنی خامیوں کا جب تک آپ اس میدان میں نہیں کودتے. آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگ سارے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, اور پھر جس کو اتنے ہاتھ چمکانے لگ جائیں پھر وہ کیسے نہیں چمکے گا. آپ دیکھیے کہ آج ہم دنیا میں باطل کو بہت پھیلا ہوا دیکھتے ہیں نا, میڈیا کس کو کوریج دیتا ہے, کن کو ایوارڈ ملتے ہیں, کن کو لوگ بڑا بناتے ہیں, جو دنیا میں بڑے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج حق والوں نے اپنا جوش دکھانا چھوڑ دیا. جیسے وہ اوپر آئے نا پانی کے اوپر, زبدر رابین, پانی پہ جب گندگی آتی نا تو جب لہریں آتی نا تو وہ سارا پانی جہاں اوپر سے ہٹا کے دریا کے کنارے پہ چھوڑ دیتی ہیں. جب دین والوں میں جوش ہوتا ہے نا تو جو معاشرے کا باطل طبقہ ہوتا ہے نا ان کو کبھی کوریج نہیں ملتا, پھر وہ سائڈوں پہ ہو جاتے ہیں, سائڈ لائن ہوتے ہیں, پھر اس طرح آپ کو برے برے برائی کے اشتہار نہیں دکھتے. تو کبھی بھی آپ کو کسی جگہ کوئی بری چیز, کوئی ویڈیو, کوئی تصویر, کوئی ایسا ماڈلنگ کرتا ہوا دکھے جس میں اپنے جسم کا اظہار کرے, تو فوراً چیک کریں اس کو کیوں سوسائٹی میں اتنی کوریج ہے, مجھے کیوں نہیں, کیونکہ میں نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے. ہم مسلمان جب انشاءاللہ دین کی دعوت دیں گے, اچھی دعوت دیں گے, تو برے لوگ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ حق آئے تو باطل چلا جاتا ہے, لیکن وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے. اور بظاہر آج آپ کہتے ہیں ہر طرف برائی ہے, کوئی برائی نہیں ہے, یہ صرف لیدر ہے. ایک مضبوط ہاتھ ڈالیے, آپ دیکھیے کہ یہ سب برائی ختم ہو کے انشاءاللہ لوگوں کی خیر نکلے گی. اور یہ قرآن یہی تو کر رہا ہے, ہمارے اندر کی خیر ابھار رہا ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس کو کام میں لا سکیں. تو کبھی مخالفت سے نہ گھبرائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.